आगे सबक देखिए भाई। काल अवलौ कफल अहदुहु मा बिमालिन अन अजनबी लजिमा साहिबहु इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाह وقال رحمه الله تعالى لا يلزمه لأنه تبرع ولهذا لا يصح من الصبي والعبد المأذون والمكاتب ولو صدر من المريض يصح من الثلث وصار كالإقراز والكفالة بالنفس। भाई गुज़श्ता सबक में हमने किताबु शिरकत शुरू की थी। भाई साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि शिरकत जायज है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा गया और उस वक्त लोग शिरकत के मामलात कर रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रद्द नहीं फरमाया, उनको इन पर बरकरार रखा। मालूम हुआ शिरकत जायज है भाई। और फिर बतलाया कि शिरकत दो किस्म पर है, एक शिरकत अमलाक है और एक शिरकत उकूद है। शिरकत अमलाक यह है कि एक मुअय्यन चीज के अंदर दो आदमी शरीक हो जाएं। मसलन एक मुअय्यन चीज दो आदमियों को वरासत में मिली या एक मुअय्यन चीज दो आदमियों ने मिलकर खरीद ली, तो ये दोनों इसके अंदर शरीक हैं भाई। और साहिब हिदाया ने बतलाया कि इन दोनों में से हर एक जो है वो अपने साथी के हिस्से में अजनबी की तरह है, लिहाजा अपने साथी के हिस्से में वो तसर्रुफ नहीं कर सकता। अलबत्ता अपने हिस्से में साथी की इजाजत के बगैर तसर्रुफ कर सकता है या नहीं, तो साहिब हिदाया ने तफसील बयान फरमाई थी कि एक सूरत यह है कि वो मुअय्यन चीज उसको दोनों ने खरीदा है या वारिस हुए हैं या इन्होंने हिबा कबूल किया है। मसलन गंदुम है भाई, तो ये गंदुम मसलन दो आदमियों को विरसे में मिली है या दोनों ने मिलकर खरीदी है या दोनों को किसी ने तोहफे के तौर पर दी है, तो इस सूरत के अंदर इस गंदुम के हर हर दाने में दोनों शरीक हैं। तो अगर इस किस्म की शिरकत अमलाक हो तो इसके अंदर हर शरीक अपने हिस्से में तसर्रुफ कर सकता है दूसरे की इजाजत के बगैर ही। लेकिन अगर दोनों का माल वो आपस में मिल गया, मसलन कुछ गंदुम एक शख्स की है और कुछ गंदुम दूसरे शख्स की है, और फिर ये दोनों की गंदुम किसी ने आपस में मिला दी गलती से या दोनों ने खुद ही आपस में मिला दी, तो इस सूरत के अंदर भी इस गंदुम के अंदर दोनों शरीक हो गए। लेकिन इसके अंदर फर्क यह है कि इसमें से बाज दाने वो एक शरीक के हैं और बाज दाने दूसरे शरीक के हैं। जब दोनों मिलकर गंदुम खरीदते थे तो हर हर दाने में दोनों शरीक होते थे, लेकिन यहां पर कुछ गंदुम एक शरीक की थी कुछ दूसरे की थी, तो जब मिलाया तो अब अलग अलग दानों में दोनों की मिल्कियत है। कोई एक भी दाना ऐसा नहीं है जिसमें दोनों इकट्ठे शरीक हों। हर दाना या तो पहले शरीक का होगा या दूसरे शरीक का, अगरचे पता नहीं चल सकता। तो फिर इस सूरत के अंदर अब एक शरीक अपने हिस्से में तसर्रुफ करना चाहता है तो फिर अपने साथी शरीक से इजाजत लेना पड़ेगी, इसलिए क्योंकि ये शख्स इस बात पर कादिर ही नहीं रहा कि अपना हिस्सा और अपने दाने अलग कर ले। इसलिए क्योंकि ये जब भी अपने दाने अलग करेगा तो उसके अंदर दूसरे शरीक के दाने भी आ जाएंगे, तो लिहाजा यहां पर तसर्रुफ के अंदर दूसरे की इजाजत जरूरी है भाई। और शिरकत की दूसरी किस्म शिरकत उकूद है। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि शिरकत उकूद में शिरकत का अकद किया जाता है और अकद के अरकान ईजाब और कबूल हैं। मसलन दोनों में से एक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फुला फुला तिजारत के अंदर इतने माल के अंदर शिरकत करता हूं और दूसरा उसको कबूल कर लेता है, तो ये दोनों के दरमियान अकद हो गया। और इसके अंदर जरूरी है कि जिस तसर्रुफ पर ये दोनों अकद करें, मसलन तिजारत वगैरह है, तो वो तसर्रुफ ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वकालत जायज हो। अगर उसके अंदर वकालत ही जायज नहीं है तो वहां पर शिरकत भी नहीं हो सकती, क्योंकि शिरकत के अंदर हर शरीक दूसरे का वकील होता है। तो साहिब हिदायत ने ये जो कैद लगाई कि वो तसर्रुफ ऐसा होना चाहिए जिसमें वकालत जायज हो, तो ये एहतराज किया साहिब हिदायत ने मुबाह चीजों के जमा करने से, क्योंकि मुबाह चीजों के जमा करने के अंदर वकालत जायज नहीं है। जो भी मुबाह चीज को जमा कर लेगा और उसको महफूज कर लेगा वो उसका मालिक बन जाएगा, जैसे जंगल से लकड़ियां लाना या जंगल से घास लाना या इसी तरह जंगल से शिकार पकड़ के लाना, तो ये सब चीजें मुबाह हैं। जो भी घास लाएगा या लकड़ी लाएगा या शिकार को पकड़ेगा वो उसका मालिक हो जाएगा, तो मुबाह चीजों के अंदर तौकील जायज नहीं, दूसरे को वकील बनाना जायज नहीं, लिहाजा इनके अंदर अक़्द शिरकत जायज नहीं, इनके अंदर अक़्द शिरकत जायज नहीं। तो लिहाजा ये दो शरीक जिस तसर्रुफ का भी अक़्द करें उसके अंदर वकालत जायज होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि शिरकत का मकसद नफे के अंदर इश्तराक है, और नफे के अंदर इश्तराक तभी हो सकता है जब दोनों अकद के अंदर एक दूसरे के वकील हों। भाई दोनों में से जो कोई भी वो तिजारत वाला अकद करेगा तो उस अकद को वो खुद कर रहा है, तो इस एतबार से वो असील है, और दूसरे की तरफ से भी अकद कर रहा है तो इस एतबार से दूसरे का वकील भी है, तो इस तरह जो नफा हासिल होगा उसमें दोनों शरीक हो जाएंगे। और फिर साहिब हिदायत ने आपको बतलाया कि ये शिरकत उकूद चार किस्म पर है, शिरकत मुफावजा, शिरकत इनान, शिरकत सनाए और शिरकतुल वजूह। भाई तो सबसे पहले हमने शिरकत मुफावजा के बारे में पढ़ना शुरू किया, आपको साहिब हिदायत ने बतलाया कि शिरकत मुफावजा के अंदर दोनों शरीकों में बराबरी जरूरी है। वजह यह है कि मुफावजा का माना ही बराबरी है, यानी बाहम एक दूसरे के बराबर होना। भाई तो लिहाजा जरूरी है कि वो दोनों शरीक माल के अंदर भी बराबर हों और तसर्रुफ के अंदर भी बराबर हों और दीन के अंदर भी बराबर हों, और माल से मुराद वो वाला माल है जिसके अंदर शिरकत जायज हो, और वो दिरहम है, दीनार है और फुलूसे नाफिका है, यानी वो जो राइज करंसी है सिर्फ उनके अंदर शिरकत हो सकती है, सामान या जमीन और जायदाद वगैरह के अंदर शिरकत नहीं हो सकती। तो ये जो दिरहम दीनार और करंसी है ये दोनों का माल बराबर होना चाहिए, अलबत्ता अगर एक की जमीन ज्यादा है या एक के पास और सामान वगैरह ज्यादा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर शिरकत नहीं हो सकती। तो लिहाजा दिरहम और दीनार और राइज करंसी में दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तसरुफ के अंदर दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, और दीन के अंदर भी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। और साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया था कि ये जो शिरकत मुफावजा हमारे नजदीक जायज है, ये इस्तेहसानन जायज है, कियास तो ये तकाजा करता है कि ये शिरकत मुफावजा जायज ही नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि इसके अंदर मजहूल चीज पर तौकील और मजहूल चीज पर कफालत लाजिम आती है, हालांकि मजहूल चीज पर वकील बनाना या मजहूल चीज का जामिन बनना ये दुरुस्त नहीं है। तवज्जो है, आपको मैंने बतलाया था कि ये अक़्द मुफावजा के अंदर दोनों शरीक हर अक़्द के अंदर एक दूसरे के वकील भी होते हैं और एक दूसरे के जामिन भी होते हैं, यानी कफील भी होते हैं, लिहाजा एक पर जो दैन लाजिम आए उसका मुतालबा दोनों से किया जा सकता है, क्योंकि एक ने अक़्द किया है वो है असील, उससे भी दैन का मुतालबा हो सकता है, और शरीक जो है उससे भी दैन का मुतालबा हो सकता है क्योंकि वो जामीन है हर अक़द में। तवज्जो है, तो लिहाजा तो जब हर शरीक दूसरे का वकील भी है और कफील भी है तो शिरकत मुफावजा के अंदर मजहूल चीज पर वकील होना और मजहूल चीज पर कफील होना लाजिम आता है, और मजहूल चीज की वकालत भी जायज नहीं और मजहूल चीज की जमानत भी जायज नहीं। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि जाओ भाई बाजार से कुछ मेरे लिए खरीद लाओ, तो अब याद रखो ये इस तरह वकील बनाना जायज नहीं, क्योंकि उस चीज का पता होना चाहिए जिस चीज के लिए मैं आपको वकील बना रहा हूं। तो जब मैंने कहा कि मेरे लिए कुछ ले आओ, इससे तो कोई तायीन नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला कि किस चीज के अंदर मैंने आपको वकील बनाया है, तो कम अज कम जींस का तो पता होना चाहिए कि मसलन मैं आपसे कहता हूं गाड़ी ले आओ, अब गाड़ियां बहुत किस्म की हैं लेकिन बहरहाल जींस का तो पता चल गया कि मैंने आपसे कहा मेरे लिए गाड़ी खरीद लाओ, या मैं आपसे कहता हूं मेरे लिए कपड़े खरीद लाओ, अब अगरचे कपड़ों की बहुत सी अकसाम और अनवा हैं लेकिन बहरहाल जींस का तो पता चल गया, तो मजहूल चीज पर वकील बनाना दुरुस्त नहीं। और इसी तरह जमानत जब किसी शख्स को दी जाती है तो उसके अंदर भी माल मालूम होना चाहिए कि वो कितने माल की जमानत दे रहा है। तो बात चल रही थी कि जो आकदे मुफावजा है ये हमारे नजदीक इस्तेहसानन जायज है, कियास ये तकाजा करता है कि आकदे मुफावजा जायज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें मजहूल चीज पर वकालत और मजहूल चीज पर जमानत लाजिम आती है, क्योंकि हर शरीक दूसरे का वकील भी है और जामिन भी है, तो कियास ये तकाजा करता है ये जायज नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्तेहसानन इसको जायज करार दिया गया। और दलील जो है हदीस है, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं फाबिजू फइन्नहु आज़मुल बरका, कि तुम आकदे मुफावजा किया करो क्योंकि ये बरकत के एतबार से बड़ा है, यानी इसमें ज्यादा बरकत है भाई। और नीज दूसरी दलील तआमुल नास है, मुसलमानों का इस पर तआमुल है, मुसलमान आपस में आकदे मुफावजा करते हैं और फुकहा ने इसका रद्द नहीं किया, तो और लोगों का अमल करना और फुकहा का रद्द न करना ये किसी चीज के जवाज की दलील होता है। और बाकी जो इसके अंदर जहालत आई उसका भी जवाब दिया कि यहां पर जो जहालत आ रही है वो तबान आ रही है, असल तो ये आकद किया जा रहा है नफे के अंदर शिरकत पर, तो अगर यहां उसके ताबे होकर अगर ताबे होकर जहालत आ भी रही है तो ये जहालत ताबे होकर आ रही है, ये असल में मकसूद नहीं है, लिहाजा इस किस्म की जहालत जो है उसको बर्दाश्त कर लिया जाता है वो जायज होती है भाई। ये इसी तरह है जैसे मुजारबत के अंदर, मुजारबत के अंदर एक शख्स का माल होता है और दूसरे शख्स का अमल होता है, मसलन जैद को तिजारत आती है लेकिन उसके पास माल नहीं, मेरे पास माल मौजूद है लेकिन मुझे तिजारत नहीं आती, तो मैं जैद को अपना माल दे देता हूं कि इस माल के साथ आप तिजारत करें और जो नफा हासिल होगा वो हम आधा आधा आपस में तकसीम कर लेंगे। तो अब इसके अंदर देखो जैद मुख्तलिफ अक्दो शीरा के मामलात करता है और उसके अंदर वो जिसका सरमाया है जिसका माल है उसकी तरफ से वकील होता है, तो वहां पर जैद मुख्तलिफ किस्म के अकद कर रहा है, तो एक मजहूल चीज पर वकील बनाना लाजिम आ रहा है क्योंकि वो मुख्तलिफ अकद करेगा, हर अकद का तो रसूल माल वाले को पता ही नहीं, लेकिन फिर भी ये जायज है क्योंकि ये जहालत ताबे होकर आ रही है, ये असल यहां पर मकसूद नहीं है भाई। तो कसदन जहालत आए वो जायज नहीं, लेकिन अगर किसी चीज के ताबे होकर कुछ जहालत आ रही हो तो वो जायज होती है, उसको बर्दाश्त कर लिया जाता है। तो यहां पर भी अक़्द मुफावजा के अंदर अगर वकालत और कफालत में कुछ जहालत आ रही है तो उसको बर्दाश्त किया जाएगा, यानी वो जायज है। और साहिब हिदायत ने आपको यह भी बतलाया कि आजाद और गुलाम के दरमियान अक़्द मुफावजा सही नहीं, और इसी तरह बालिग और नाबालिग के दरमियान अक़्द मुफावजा सही नहीं, इसलिए क्योंकि अक़्द मुफावजा की बुनियाद बराबरी पर है और आजाद और गुलाम या इसी तरह बालिग और नाबालिग ये तो तसरुफ के अंदर बराबर नहीं, गुलाम अपने आका की इजाजत के बगैर तसरुफ नहीं कर सकता और इसी तरह नाबालिग भी अपने वली की इजाजत के बगैर तसरुफ नहीं कर सकता, तो यहां दोनों अक़्द करने वालों में बराबरी न रही, तो लिहाजा आजाद और गुलाम और बालिग और नाबालिग के दरमियान अक़्द मुफावजा दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह मुसलमान और काफिर के दरमियान भी अक़्द मुफावजा दुरुस्त नहीं, इसलिए क्योंकि यहां तसर्रुफ में बराबरी नहीं है, काफिर जो है वो तो शराब और खिंजीर में तसर्रुफ कर सकता है लेकिन मुसलमान तो शराब और खिंजीर में तसर्रुफ नहीं कर सकता भाई, तो यहां भी बराबरी नहीं। और साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया था कि अक़्द मुफावजा करने वाले दोनों शरीकों में से जो शरीक भी किसी चीज को खरीदेगा तो उसमें शिरकत होगी दोनों की, सिवाय अपने घर वालों के गल्ले के या अपने घर वालों के और अपने कपड़ों के भाई। इसकी वजह यह है कि अपना और अपने घर वालों का खर्चा तो किसी दूसरे पर लाजिम नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये चीजें जो खरीदेगा ये मुस्तस्ना होंगी अक़्द शिरकत से भाई। ये अकदे शिरकत से मुस्तस्ना होंगी जरूरत की वजह से कि हर इंसान जो है वो इन चीजों का मोहताज है भाई, मोहताज है। अलबत्ता ये चीजें भी कोई खरीदेगा तो वो जो बाएं है वो दोनों से मुतालबा कर सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के कफील हैं। अलबत्ता अगर वो बाएं इसके शरीक से ये माल ले लेता है तो फिर इस सूरत में इसके शरीक ने चूंकि इसकी तरफ से माल अदा किया है लिहाजा वो इस पर रुजू कर सकता है भाई। और फिर साहिब हिदाय ने जाब्ता बयान फरमाया कि आकदे शिरकत करने वाले दो शरीकों में से अगर किसी पर कोई दैन लाजिम हो जाए तो किस दैन के अंदर उसके शरीक से भी उसका मुतालबा किया जा सकता है और किस दैन के अंदर उसके शरीक से मुतालबा नहीं किया जा सकता। तो बतलाया कि वो दुयून जो किसी ऐसी चीज के बदले में आए जिसमें इश्तराक हो सके यानी आकदे मुआवजा की वजह से जो दुयून आएंगे उसके अंदर दोनों से मुतालबा हो सकता है। अलबत्ता वो दुयून के जो ऐसी चीज की वजह से आए जिसमें इश्तराक नहीं हो सकता तो उसमें जिस पर दैन आया है उसी से मुतालबा हो सकता है, दूसरे से मुतालबा नहीं हो सकता। जैसे इन दोनों में से किसी एक ने जिनायत कर दी तो जिनायत की वजह से जो जमान आएगा उसका मुतालबा उसी जिनायत वाले से ही किया जाएगा, उसके शरीक से उसका मुतालबा नहीं हो सकता। या दोनों शरीकों में से एक शरीक निकाह कर लेता है तो निकाह की वजह से उस पर महर लाजिम आएगा तो महर का मुतालबा उसी शरीक से किया जा सकता है, उसके दूसरे साथी से उसका मुतालबा नहीं किया जा सकता। या इसी तरह खुला है, खुला की वजह से औरत पर माल वाजिब होता है तो अब एक औरत पर खुला की वजह से माल वाजिब हुआ है और इस औरत ने किसी से अकदे मुफावजा कर रखा है तो यह बदल खुला का मुतालबा सिर्फ इस औरत से ही किया जा सकता है, इसके शरीक से नहीं किया जा सकता। या इसी तरह दोनों शरीकों में से एक ने कत्ले अम्द कर दिया और फिर बाद में उन मकतूल के औलिया से सुलह कर ली माल पर तो यह माल जो सुलह अंदमिल अम्द की वजह से वाजिब हुआ है ये इसी शरीक पर आएगा जिसने कत्ले आमद किया था तो उसी शरीक से मुतालबा हो सकता है, दूसरे शरीक से मुतालबा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। काला वलौ कफला अहदुहुमा बिमालिन अन अजनबीन लज़िमा साहिबहू इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाह وقال رحمه الله تعالى لا يلزمه। भाई अक़्दे मुफावजा के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि दोनों शरीक एक दूसरे के वकील भी होते हैं और एक दूसरे के कफील भी, लेकिन अगर इन दोनों शरीकों में से कोई एक जो है किसी अजनबी की तरफ से कफील और जामीन बन जाए माल का क्या तो क्या दूसरे शरीक पर भी वो माल लाजिम होगा या नहीं, यानी उससे भी मुतालबा किया जा सकता है या नहीं। मसलन देखो जैद और अमर इन दोनों ने आपस में अकदे मुफावजा किया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के शरीक हैं और फिर इनमें से जैद जो है उसने एक अजनबी की जमानत दे दी, जैद एक अजनबी का कफील बन गया। तवज्जो है, तो जैद हुआ कफील और वो अजनबी हुआ मकफूल अनहु यानी जिसकी तरफ से जमानत दी गई है। तो यहां अब बार बार दो तीन चीजें जिक्र होंगी वो आपने जहन में रखना है भाई। एक तो ये जहन में रखिए कि जैद और अमर इन दोनों के दरमियान अकदे मुफावजा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के शरीक हैं और ये जो जैद है इसने एक अजनबी की जमानत दी है यानी उसकी तरफ से कफील बना है, तो जैद को हम ताबीर करेंगे कफील के साथ और अमर जो है उसको हम ताबीर करेंगे शरीक के साथ, वो जैद का शरीक है और वो जो मकफूल अनहु है उसको हम ताबीर करेंगे अजनबी के साथ। तवज्जो है, तो जैद क्या है कफील और अमर उसका शरीक और वो जो मकफूल अनहु है वो एक अजनबी आदमी है भाई। तो जैद और अमर में अकदे मुफावजा है, जैद और अमर तो एक दूसरे के वकील भी हैं और कफील भी हैं, लेकिन जैद एक मामले के अंदर एक अजनबी शख्स की तरफ से कफील बन गया, जामीन बन गया। तो आप जानते हैं कि जैसे असील से माल का मुतालबा हो सकता है, इसी तरह उसके कफील से भी माल का मुतालबा हो सकता है। तो अजनबी पर दैन लाजिम है, उसका मुतालबा जैसे अजनबी से हो सकता है, अब उसका मुतालबा कफील यानी जैद से भी हो सकता है क्योंकि जैद ने जमानत दी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जैद से जिस दैन का मुतालबा हो रहा है यानी जिसकी जैद ने जमानत दी है, क्या इसी दैन का मुतालबा अमर से भी हो सकता है या नहीं, क्या अमर पर भी यह दैन लाजिम हुआ या नहीं। सूरत समझ में आ रही है? तो याद रखो इसमें इमाम साहेब और साहिबैन का इख्तिलाफ है। इमाम साहेब फरमाते हैं कि जैद से इस माल का मुतालबा जब हो सकता है तो अमर जो है उससे भी इस माल का मुतालबा हो सकता है, जबकि साहिबैन फरमाते हैं नहीं, इस माल का मुतालबा सिर्फ जैद से हो सकता है यानी कफील से हो सकता है, कफील के शरीक यानी अमर से इस माल का मुतालबा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? फिर इसमें याद रखिए, तफसील याद रखिए, जैद एक अजनबी की तरफ से कफील बन गया है, या तो अजनबी ने उसे कहा था कि मेरी तरफ से आप कफील बन जाएं, या अजनबी के कहे बगैर ही जैद उसकी तरफ से कफील बन गया है। दो सूरतें हैं। तो याद रखो अगर जैद अजनबी के कहने पर उसकी तरफ से जामिन बना है, अजनबी ने उसे कहा था कि आप मेरी तरफ से जमानत दे दीजिए, तो जैद ने जमानत दे दी यानी वो कफील बन गया। तो इस सूरत में याद रखो अगर जैद को यह माल अदा करना पड़ गया, कर्जखा जैद के पास आ गए, उन्होंने जैद से यह माल वसूल कर लिया, तो जैद चूंकि उस अजनबी के कहने पर उसका कफील बना था, लिहाजा जैद उस अजनबी पर रुजू कर सकता है कि मैंने आपके कहने पर जमानत दी थी और आपकी वजह से यह मुझे माल अदा करना पड़ा, लिहाजा अब आप मुझे यह माल अदा करें। यानी यूं कहो आसान लफ्जों में कि अगर जैद उस अजनबी के कहने पर कफील बना है तो जैद अगर यह माल अदा कर देता है तो जैद उस अजनबी से जमान वसूल कर सकता है। जैद उस अजनबी से जमान वसूल कर सकता है कि आपकी वजह से मुझे यह माल अदा करना पड़ा है, अब आप मुझे यह माल अदा करें, जैद उससे जमान वसूल कर सकता है। लेकिन अगर जैद खुद ही कफील बना था, अजनबी ने उसे नहीं कहा और जैद ने खुद ही जमानत दे दी उन कर्ज खाहों को कि यह अजनबी आपका दैन अदा कर देगा, अगर यह अदा नहीं करता तो मुझसे यह दैन वसूल कर लेना, और फिर बाद में वो कर्ज खा जैद के पास आए, उससे मुतालबा किया और उन्होंने जैद से यानी कफील से वो माल वसूल कर लिया। तो याद रखो इस सूरत में जैद उस अजनबी पर रुजू नहीं कर सकता, जैद इस सूरत में उस अजनबी पर रुजू नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि अगर जैद उस पर रुजू करेगा तो अजनबी जवाब में कह सकता है कि मैंने तो आपको नहीं कहा था कि मेरी तरफ से जामीन बने और मेरी तरफ से माल अदा करें, यह आपने अपनी तरफ से माल अदा किया है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। भाई सूरत समझ में आ गई? मालूम हुआ बात चल रही है कफालत बिल माल की, जैद ने किस चीज की जमानत दी है? माल की। और इसमें फिर दो सूरतें हैं, ये कफालत बिल माल जो है या तो बी अमरिल अजनबी होगी, अजनबी के कहने की वजह से होगी, या बगैर ही अमरिल अजनबी, अजनबी के कहे बगैर होगी। और अगर ये कफालत बिल माल जो है अगर बी अमरिल अजनबी हो और जैद को यह दैन अदा करना पड़ जाए तो जैद उस अजनबी पर रुजू करके जमान वसूल कर सकता है। जी। और अगर यह कफालत बिल माल जो है यह बगैर ही अमरिल अजनबी है तो इस सूरत में अगर जैद यह माल अदा कर दे तो जैद उस अजनबी पर जमान के सिलसिले में रुजू नहीं कर सकता, रुजू नहीं कर सकता। माना यह है कि जबरन उसे वसूल नहीं कर सकता, अगर जैद खुद ही जामीन बना था अजनबी के कहे बगैर तो यह माना नहीं कि जैद उससे जमान ले ही नहीं सकता, माना यह है कि जैद उससे जबरन जमान नहीं ले सकता, यानी उसे काजी के पास ले जाए और उससे जमान का मुतालबा करें, नहीं जैद ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अजनबी कहेगा कि मैंने तो आपको नहीं कहा था कि आप मेरी तरफ से जामीन बने और मेरी तरफ से जमान अदा करें। तो जैद जब अजनबी के कहे बगैर जामीन बना है और फिर जैद ने यह दैन अदा कर दिया है तो बाद में जैद जबरन उस अजनबी से जमान वसूल नहीं कर सकता। हां अखलाकी तौर पर उस अजनबी को यह जमान अदा करना चाहिए क्योंकि जैद ने उसके जिम्मे एक दैन को अदा किया है। बात समझ में आ गई। तो सूरत मसला यह जिक्र हो रही थी कि दो शरीक हैं जैद और अमर, और उनमें से जैद जो है एक अजनबी की तरफ से कफील बन गया है और उस अजनबी के कहने पर कफील बना है। तो इस दैन का मुतालबा उस अजनबी के साथ साथ अब जैद से भी हो सकता है, लेकिन क्या अमर से भी इस दैन का मुतालबा हो सकता है या नहीं, तो इसमें इमाम साहेब और साहिबैन का इख्तिलाफ है। इमाम साहेब फरमाते हैं कि इस दैन का मुतालबा उस कफील के शरीक यानी अमर से भी हो सकता है, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, ये जो अक़्दे कफालत है ये अक़्दे तबर्रु है। यह अक़्दे कफालत क्या है? अक़्दे तबर्रु है, और दो शरीकों में से एक का तबर्रु दूसरे पर लाजिम नहीं होता। तबर्रुआत में एक शरीक का तबर्रु दूसरे शरीक पर लाजिम नहीं होता। मैंने आपको बतलाया था तबर्रु इसे कहते हैं कि कोई चीज आप पर लाजिम ना हो और आप अपनी तरफ से अदा करें, इसको तबर्रु कहते हैं। जैसे मसलन आप किसी फकीर को अपनी तरफ से वैसे ही सदका नाफिला देते हैं, यानी वैसे ही सदका करते हैं, आप पर कोई लाजिम नहीं। एक तो सदका वाजिबा है यानी जकात वगैरह, और एक है सदका नाफिला कि अपनी तरफ से वैसे खैरात वगैरह करना, फकीर के ऊपर सदका करना। तो याद रखो ये जो नफली सदकात आप दे रहे हैं ये तबर्रु है भाई, ये क्या है? तबर्रु, ये आप पर लाजिम नहीं। या इसी तरह आप नफल पढ़ते हैं, कुछ तो नमाजें फर्ज हैं लेकिन ये जो आप नफल पढ़ रहे हैं ये तो आप पर लाजिम नहीं है, तो ये नफल क्या है? ये भी तबर्रु है भाई। इसी तरह आप नफली रोजे रखते हैं तो ये नफली रोजे भी आप पर कोई लाजिम नहीं, तो ये भी तबर्रु है भाई। बात समझ में आ गई? तो साहिबैन फरमाते हैं कि ये अक़्दे कफालत जो है ये तबर्रु है। यह अक़्दे कफालत क्या है? अक़्दे तबर्रु है, और एक शरीक का तबर्रु दूसरे शरीक पर लाजिम नहीं होता। लिहाजा जैद कफील बना है तो जैद ही से इस दैन का मुतालबा हो सकता है, जैद के शरीक यानी अमर से इस दैन का मुतालबा नहीं हो सकता। और नीज यह भी याद रखना, यह जो इमाम साहेब और साहिबैन का इख्तिलाफ है, आगे चलकर साहिब हिदाया भी आपको बतलाएंगे, ये उस सूरत में इख्तिलाफ है जब जैद ने अजनबी के कहने पर जमानत दी हो। जब जैद अजनबी के कहने पर कफील बना है तो उस सूरत में इमाम साहेब और साहिबैन का इख्तिलाफ है। इमाम साहब फरमाते हैं ये दैन जैसे जैद पर लाजिम है इसी तरह उसके शरीक पर भी लाजिम है, जबकि साहिबैन फरमाते हैं नहीं, ये अक़्दे कफालत अक़्दे तबर्रु है और ये सिर्फ जैद पर ही लाजिम है, उसके शरीक यानी अमर पर लाजिम नहीं, अमर से इस दैन का मुतालबा नहीं किया जा सकता। और यह भी समझ लो कि यह अक़्दे कफालत तबर्रु किस तरह है भाई। देखिए तबर्रु मैंने आपको बतलाया एक ऐसी चीज अदा करना जो आपके जिम्मे लाजिम ना हो। आपसे एक आदमी कहता है कि आप इस मसले के अंदर मेरे जामिन बन जाएं, तो आपकी मर्जी है आप जामिन बने या ना बने। मालूम हुआ ये अक़्दे कफालत जो है किसी पर लाजिम नहीं होता, उसकी मर्जी होती है वो कफील बने या कफील न बने। मालूम हुआ अक़्दे कफालत तबर्रु है भाई। फिर सुनिए भाई, मसला मुश्किल है इसलिए मैं बार बार तकरार करवा रहा हूं। मसला जो है कफालत बिल माल का चल रहा है, और कफालत बिल माल के अंदर एक शरीक जो है किसी अजनबी की तरफ से कफील बन गया है लेकिन उस अजनबी के कहने पर। तो इमाम साहब के नजदीक इस कफील पर भी यह दैन लाजिम और इसके शरीक पर भी यह दैन लाजिम है, दोनों से मुतालबा हो सकता है, जबकि साहिबैन फरमाते नहीं, सिर्फ उसी शरीक से मुतालबा हो सकता है जो कफील बना है, उसके दूसरे साथी से इसका मुतालबा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई जी। देखिए भाई किताब पर काला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं वलाउ का फला अहदुहुमा बिमालिन, और अगर दो शरीकों में से एक जो है वो माल का कफील हो गया अन अजनबी यिन किसी अजनबी की तरफ से लजीमा साहिबहु इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाहु ताला, तो उस शरीक के साथी पर भी ये दैन लाजिम होगा इमाम साहेब के नजदीक, यानी उस कफील का जो शरीक है उससे भी इस दैन का मुतालबा हो सकता है, उस पर भी यह दैन लाजिम हो गया। वकाला और साहिबैन फरमाते हैं ला यल्जमुहू कि उस कफील के साथी पर यानी उस दूसरे शरीक पर यह दैन लाजिम नहीं, उससे मुतालबा नहीं हो सकता। अब साहिबैन की दलील आ रही है आगे भाई। साहिबैन फरमाते हैं याकदे कफालत हकदे तबर्रो है और एक शरीक का तबर्रो दूसरे शरीक पर लाजिम नहीं होता भाई। तो कहते हैं वकाला और साहिबैन फरमाते हैं ला यल्जमुहू कि उसके साथी पर यह दैन लाजिम नहीं होगा लिअन्नहु तबर्रुन इसलिए क्योंकि अक़्दे कफालत जो है यह तबर्रु है। साहिबैन फरमाते हैं कि अक़्दे मुआवजा की वजह से जो दैन एक शरीक पर लाजिम होगा वह दूसरे पर भी लाजिम हो जाएगा। अक़्दे मुआवजा की वजह से जैसे अभी गुज़श्ता सबक के आखिर में आया था कि दो शरीकों में से एक पर जब दैन लाजिम हो जाए ऐसे सबब की वजह से जिसमें शिरकत हो सके जैसे बैउ शिरा और इजारा वगैरह है तो इसमें एक शरीक पर जो दैन लाजिम होगा वो उसके दूसरे साथी पर भी लाजिम हो जाएगा यानी अक़्दे मुआवजा के अंदर ऐसा होगा। लेकिन ये कफालत तो अक़्दे तबर्रु है लिहाजा इसकी वजह से जो दैन लाजिम होगा वह दूसरे शरीक से उसका मुतालबा नहीं हो सकता। तो कहते हैं वकाला ला यल्जमुहू और साहिबैन फरमाते हैं उसके साथी पर जो है यह दैन लाजिम नहीं होगा लिअन्नहु तबर्रुन इसलिए क्योंकि अक़्दे कफालत यह तबर्रु है वलिहादा ला यसिहु मिनस्सबी वलअब्दिल माजूनी वलमुकातबी और इसी वजह से यह सही नहीं होता बच्चे से और अब्दे माजून से और मुकातब से। याद रखो बच्चा अब्दे माजून और मुकातब ये अहले तबर्रो नहीं है। मैंने बताया तबर्रो किसे कहते हैं कि कोई चीज अपनी तरफ से किसी को देना जो आप पर लाजिम ना हो। तो ये जो बच्चा है ये अपना माल किसी को वैसे ही देना चाहता है बतौर सदके के या वैसे किसी को अपने माल का मालिक बनाना चाहता है नहीं भाई ये तो इसमें तो बच्चे का नुकसान है बच्चा ना समझ है वो अपना माल इस तरह जाया करेगा लिहाजा वो अहले तबर्रो नहीं है वो किसी को अपने माल का मालिक वैसे नहीं बना सकता। इसी तरह याद रखो अब्दे माजून वो गुलाम जिसे आका ने इजाजत दी है कि वो तिजारत करे मसलन किसी आदमी का गुलाम समझदार है तो वो आका उसे कहता है कि जाओ तिजारत करो और माल कमा कर लाओ। तो याद रखो ये जो अब्दे माजून है ये भी तबर्रो का अहल नहीं है ये किसी को माल का मालिक वैसे ही नहीं बना सकता भाई। वजह ये कि इसको आका ने जो तिजारत की इजाजत दी है वो माल कमाने के लिए इजाजत दी है माल को उड़ाने और खत्म करने के लिए इजाजत नहीं दी क्योंकि माल तो सारा मालिक का है भाई। तो अब्दे माजून भी तबर्रो का अहल नहीं है। इसी तरह याद रखो अब्दे मुकातब जो है जिसने आका के साथ अक़्दे किताबत किया है और आका ने मसलन उसे कहा है कि दो साल तक हर महीने मुझे 1,00,000 रुपए अदा करो तो तुम फिर आजाद हो। और आप पढ़ चुके हैं कि ये जो मुकातब है ये आजाद आदमी की तरह होता है आका इससे जबरन खिदमत नहीं ले सकता ये जाएगा जाकर मेहनत करेगा पैसे कमाएगा और अपने आप को आजाद करवाएगा। तो ये जो मुकातब है ये भी अहले तबर्रो नहीं है इसलिए क्योंकि शरीयत ने इसको आजाद आदमी की तरह तसरुफात का मालिक बना दिया है लेकिन ये तसरुफात का मालिक इसको शरीयत ने आजादी के लिए बनाया है ताकि ये बदले किताबत अदा करके अपने आप को आजाद करे लिहाजा इसको भी माल उड़ाने की इजाजत नहीं होगी कि वो अपने माल का मालिक किसी दूसरे को बनाए। तो मालूम हुआ बच्चा अब्दे माजून और मुकातब जो हैं ये अहले तबर्रो नहीं है भाई। तो साहिबैन की दलील चल रही है साहिबैन फरमाते हैं कि यह अक़्दे कफालत जो है ये अक़्दे तबर्रो है इसीलिए बच्चे की तरफ से और अब्दे माजून की तरफ से और मुकातब की तरफ से कफालत सही नहीं जी। ये साबित करता है कि अक़्दे कफालत अक़्दे तबर्रो है। अगर ये अक़्दे कफालत तबर्रो न होता यह अक़्दे मुआवजा होता फिर तो बच्चे को भी इजाजत होती फिर तो अब्दे माजून को भी इजाजत होती और फिर तो मुकातब को भी इजाजत होती भाई। बच्चे को भी अगर उसका वली इजाजत दे देता है तो वो बैउ शिरा कर सकता है भाई। लेकिन बच्चा अब्दे माजून और मुकातब ये अक़्दे कफालत नहीं कर सकते ये किसी के जामिन नहीं बन सकते मालूम अक़्दे कफालत अक़्दे तबर्रो है इसीलिए ये इसके अहल नहीं है भाई। ये माना है वलिहादा ला यसिहु मिनस्सबी वल अब्दिल माजूनी वल मुकातबी और इसीलिए यह अक़्दे कफालत सही नहीं है बच्चे और अब्दे माजून और मुकातब की तरफ से वलौ सदरा मिनल मरीज यसिहु मिनस्सुलुस साहिबैन की दलील चल रही है। नी साहिबैन फरमाते हैं कि यह अकद कफालत या अकद मुआवजा नहीं है बल्कि यह अकद तबर्रो है। इसीलिए अगर वो शख्स जो मरजुल मौत में मुबतला है वो अगर यह अकद कफालत करना चाहता है तो अपने माल के सुलुस तक वो जमानत किसी को दे सकता है, इससे ज्यादा की जमानत नहीं दे सकता। भाई आप पढ़ चुके हैं कि इंसान जब तक तंदुरुस्त है वो अपने माल में जिस तरह तसरुफ करना चाहे कर सकता है, वो अपना सारा माल किसी को देना चाहता है वो सारा माल दे सकता है। लेकिन जब इंसान मरजुल मौत में मुब्तला हो जाए तो अब इसके वारिसों का हक माल के साथ मुतअल्लिक हो गया, अब ये इस दुनिया से जाने वाला है और इसका माल इसके वारिसों की तरफ मुंतकिल होने वाला है। तो मरजुल मौत में मरीज के माल के साथ वारिसों का हक मुतालिक हो जाता है और उसके बाद अगर मरीज तबर्रो करना चाहता है तो सुलुस तक उसको इजाजत है, सुलुस से जायद जो है वो वारिसों का हक है। लिहाजा मरजुल मौत में मुबतला शख्स अपने माल को सदका खैरात करना चाहता है तो सिर्फ सुलुस तक कर सकता है, बाकी वारिसों का हक है। या इसी तरह मरजुल मौत में मुबतला शख्स अपने माल की वसीयत करना चाहता है तो सिर्फ सुलुस तक वसीयत कर सकता है, इससे जायद वारिसों का हक है। भाई चुनाचे साहिबैन फरमाते हैं कि अकद कफालत अकद तबर्रो है, इसीलिए मरजुल मौत में मुबतला शख्स अपने माल के सुलुस तक जो है अकद कफालत कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मालूम हुआ अकद कफालत तबर्रो है। अगर यह अकद मुआवजा होता फिर तो मरजुल मौत में मुबतला शख्स भी अपने सारे माल के अंदर अकद कफालत कर सकता, लेकिन वो अपने सारे माल में अकद कफालत नहीं कर सकता। मालूम हुआ यह अकद तबर्रो है। भाई तो कहते हैं वला उस्सा दारा मीनल मरीजी, और यह अकद कफालत अगर मरजुल मौत में मुबतला मरीज की तरफ से सादिर हो जाए यानी उसकी तरफ से पेश आ जाए तो यह सिहु मीना सुलुसी, तो यह उसके माल के सुलुस में से सही होता है, जायद के अंदर सही नहीं। भाई वसारकल इकराजी वल कफालती बिन नफसी इकराज, भाई अकराजा युकरिज़ इकराज का माना है किसी को कर्ज देना, कर्ज देना। साहिबैन फरमाते हैं कि ये जो दो शरीक हैं इन दोनों में से अगर किसी एक को कोई आदमी कर्ज के तौर पर कोई माल दे दे, मसलन जैद और अमर शरीक हैं और जैद को कुछ माल की जरूरत पेश आ गई और उसने किसी अजनबी से कर्ज ले लिया, तो साहिबैन फरमाते हैं ये जो कर्ज है ये भी अकद तबर्रो है, ये इकराज जो है यानी कर्ज देना ये भी क्या है अकद तबर्रो। ये जो अजनबी ने एक शरीक को कर्ज दिया है ये अकद तबर्रो है और इसीलिए इस कर्ज का मुतालबा इसी शरीक से हो सकता है जिसको कर्ज दिया गया है, इसके दूसरे साथी से इस कर्ज का मुतालबा नहीं हो सकता। तो साहिबैन फरमाते हैं इकराज जो है वो भी अकद तबर्रो है। भाई जो शरीक कर्ज लेगा उसी से मुतालबा हो सकता है, उसके दूसरे साथी से कर्ज का मुतालबा नहीं हो सकता। और इसी तरह याद रखना एक है कफालत बिन नफ्स। भाई जी। कफालत बिल माल में तो एक शख्स माल का जामिन बनता है, तवज्जो है जी। मसलन अजनबी के ऊपर देन था, उसने कुछ माल अदा करना है किसी का, तो जैद उसकी तरफ से कफील बन गया, जामीन बन गया माल का, तो यह है कफालत बिल माल। और एक होती है कफालत बिन नफ्स भाई, यानी किसी के नफ्स का कफील बनना, उसकी जान का कफील बनना। कफालत बिन नफ्स के अंदर एक शख्स को हाजिर करने की जमानत दी जाती है कि इस शख्स को फला मौके पर हाजिर करना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, तो यह है कफालत बिन नफ्स के आप एक शख्स के जान की जमानत दे रहे हैं, माल की जमानत नहीं। इसमें आपसे माल का मुतालबा नहीं हो सकता, हां आपसे उस शख्स का मुतालबा हो सकता है कि आप उस शख्स को हाजिर करें लेकर आएं। मसलन एक अजनबी है उसके ऊपर देन है भाई जी। और वो जो कर्ज खा है वो इस अजनबी को पकड़कर अब काजी के पास ले जा रहे हैं, तो आप जामीन बन जाते हैं और आप कहते हैं कि ये जो मदयून है इसको तीन दिन की मोहलत दे दीजिए, ये आपका देन आपको अदा कर देगा। अगर इसने तीन दिन के अंदर ये माल अदा न किया तो इस शख्स को काजी के पास हाजिर करना मेरा काम है। तो देखो आप जामीन बन गए उस आदमी के, लेकिन उसके माल के जामीन नहीं बने, उसके नफ्स के जामीन बने हैं कि इस आदमी को काजी के पास हाजिर करना यह मेरा काम है। इसको कहते हैं कफालत बिन नफ्स भाई, तवज्जो है। और याद रखो ये जो कफालत बिन नफ्स है ये भी अक्दे तबर्रो है भाई, कफालत बिन नफ्स भी क्या है, अक्दे तबर्रो है, यहां मुआवजा नहीं, आपने उस आदमी को हाजिर करना है। तो बात चल रही है कफालत बिल माल की। साहिबैन फरमाते हैं ये कफालत बिल माल जो है ये अक्दे तबर्रो है, तो ये भी इकराज की तरह हो गया और ये कफालत बिन नफ्स की तरह हो गया। जी। किस चीज की बात चल रही है, कफालत बिल माल की, लेकिन ये कफालत बिल माल भी किसकी तरह है, ये इकराज की तरह है, कर्ज देने की तरह, और कफालत बिन नफ्स की तरह है। और इकराज और कफालत बिन नफ्स के अंदर जिसने कर्ज लिया है या जो कफील बना है उसी से मुतालबा हो सकता है, दूसरे आदमी से मुतालबा नहीं हो सकता। तो ये कफालत बिल माल भी इसी की तरह है। दलील समझ में आ गई, साहिबैन की दलील का खुलासा फिर समझ लें। साहिबैन फरमाते हैं कि ये जो एक शरीक ने अजनबी की तरफ से माल की जमानत दी है ये अक्दे तबर्रो है, तो एक शरीक का अक्दे तबर्रो दूसरे पर लाजिम नहीं होता, लिहाजा दूसरे शरीक से इस माल का मुतालबा नहीं किया जा सकता। तो ये कफालत बिल माल जो है ये भी किसकी तरह हो गई, इकराज की तरह, कर्ज देने की तरह, और कफालत बिन नफ्स की तरह। और इकराज और कफालत बिन नफ्स के अंदर जो कर्ज ले या जो कफील बिन नफ्स बनता है उसी से मुतालबा हो सकता है, उसके शरीक से मुतालबा नहीं हो सकता। तो लिहाजा यहां भी कफालत बिल माल के अंदर भी कफील से ही मुतालबा हो सकता है, उसके शरीक से मुतालबा नहीं हो सकता। अब आगे इमाम साहब की दलील आ रही है, कहते हैं वली अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला अन्नहु तबर्रुउन इब्तिदाअन व मुआवजतुन बकाअन। इमाम साहब फरमाते हैं ये अक्दे कफालत बिल माल जो भी अमरिल अजनबी हो यानी भी अमरिल मकफूल अनहु हो, ये अक्दे कफालत जो है ये इब्तिदा के एतबार से अक्दे तबर्रो है, लेकिन इंतहा के एतबार से देखें तो ये अक्दे मुआवजा है। तवज्जो है, सूरत क्या जिक्र हो रही है, जैद और अमर शरीक हैं, जैद कफील बन गया एक अजनबी की तरफ से उस अजनबी के कहने पर, और आपको मैंने बतलाया कि जब मकफूल अनहू के कहने पर कोई कफील बनता है तो अगर उस कफील को माल अदा करना पड़ जाए तो वो कफील बाद में उस मकफूल अनहू से जमान वसूल कर सकता है कि मुझे आपकी वजह से ये माल अदा करना पड़ा है, लिहाजा अब आप ये माल मुझे अदा करें। तवज्जो है, तो इमाम साहब फरमाते हैं कि बात चल रही है उस अक्दे कफालत बिल माल की जो भी अमरिल अजनबी है या जो भी अमरिल मकफूल अनहू है, और ये जो अक्दे कफालत है इब्तिदा के एतबार से यह अक्दे तबर्रो है, इब्तिदा के एतबार से अक्दे तबर्रो है। आपसे एक आदमी ने कहा मेरी तरफ से जमानत दे दे, आपकी मर्जी है आप जामीन बने या जामीन न बने, तो लिहाजा इब्तिदा के एतबार से यह अक्दे कफालत बिल माल भी अमरिल अजनबी ये इब्तिदा के एतबार से तबर्रो है, लेकिन इंतहा के एतबार से यह मुआवजा है, क्योंकि अगर कफील को यह माल अदा करना पड़ जाए तो वो इसका जमान वसूल कर सकता है मकफूल अनहू से। तो ये कफालत बिल माल जो भी अमरिल अजनबी हो ये इब्तिदा के एतबार से तबर्रो है, लेकिन इंतहा और बका के एतबार से ये मुआवजा है भाई। और मुफावजा के अंदर भी आपने पढ़ा कि वो देन जो एक शरीक पर लाजिम हो किसी अक्दे मुआवजा की वजह से तो दूसरे शरीक पर भी वो देन लाजिम हो जाता है, उससे भी उसका मुतालबा किया जा सकता है। तो इमाम साहब फरमाते हैं ये जो कफालत बिल माल है भी अमरिल अजनबी इब्तिदा के एतबार से ये तबर्रो है, लेकिन इंतहा और बका के एतबार से ये मुआवजा है, लिहाजा दूसरे शरीक पर भी यह माल लाजिम हो जाएगा और उससे भी इसका मुतालबा किया जा सकता है। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु तबर्रुउन इब्तिदाअन, के ये अक्दे कफालत जो है इब्तिदा के एतबार से तबर्रु है, व मुआवजतुन बकाअन, और ये बका के एतबार से मुआवजा है भाई। लिअन्नहु यस्तौजिबु ज़माना, भाई इधर देखिए मैंने आपको बतला दिया कि यह अक्दे कफालत बिल माल जो भी अमरिल अजनबी हो इब्तिदा के एतबार से तबर्रो और इंतहा के एतबार से मुआवजा, भाई इंतहा के एतबार से मुआवजा कैसे है, मैंने आपको बतलाया कि अगर कफील को यह माल अदा करना पड़ जाए तो चूंकि उसने अजनबी के कहने की वजह से जमानत दी थी तो अब यह कफील उस अजनबी पर रुजू करके उससे जमान ले सकता है, तो यह मुआवजा हो गया। वही अब बयान कर रहे हैं कि यह बका के एतबार से मुआवजा कैसे है भाई। कहते हैं अन्नहु यस्तौजिबु जमान बिमा युअद्दी अलल मकफूल अन्हु। इस्तौजब यस्तौजिबु इस्तीजाब का माना है मुस्तहिक होना। लिअन्नहु यस्तौजिबु ज़माना, इसलिए क्योंकि वो जो कफील है वो जमान का मुस्तहिक हो जाता है, वो जमान वसूल कर सकता है। भाई किस चीज का जमान? कहते हैं बीमा यू अद्दी, उस चीज के बदले में जो उसने अदा किया है। कफील ने अगर ये देन अदा किया है तो उसकी वजह से अब वो उस अजनबी से जमान वसूल कर सकता है। तो कहते हैं लिअन्नहु यस्तौजिबु ज़मान बिमा युअद्दी, इसलिए क्योंकि ये कफील जो है ये जो उसने अदायगी की है उसकी वजह से जमान का मुस्तहिक हो जाता है। अलल मकफूल अनहु, किस पर जमान का मुस्तहिक होता है? मकफूल अनहु पर, यानी वो जो अजनबी है जिसकी तरफ से इसने जमानत दी थी, तो ये जमान का मुस्तहिक हो जाता है। अलल मकफूल अनहु, मकफूल अनहु पर। इजा कानत इल कफालत भी अमरी, जब ये कफालत उस मकफूल अनहु के कहने पर हो। फबिन नजर इलल बकाई यतज़म्मनुहुल मुफावजतु, फबिन नजर इलल बकाई, तो बका की तरफ देखते हुए यतज़म्मनुहुल मुफावजतु, अक़्दे मुफावजा इस कफालत को मुतज़म्मिन है। यह अक़्दे कफालत बका के एतबार से क्या है? मुआवजा। और शिरकत मुफावजा में भी क्या होता है? तिजारत वगैरह की जाती है और उसमें भी मुआवजात होते हैं। तो बका के एतबार से अक़्दे मुफावजा इस अक़्दे कफालत को भी मुतज़म्मिन है, क्योंकि यह भी बका के एतबार से मुआवजा है। यह माना है फबिन नजरी इलल बकाई, तो बका की तरफ देखते हुए यतज़म्मनुहुल मुफावजतु, मुफावजा मुतज़म्मिन है इस अक़्दे कफालत को। यह कफालत बिल माल भी अमरिल अजनबी, यह भी इंतहा के एतबार से मुआवजा है, तो मुफावजा इसको भी मुतज़म्मिन है भाई। तो कहते हैं फबिन नजरी इलल बकाई, तो बका की तरफ नजर करते हुए यतज़म्मनुहुल मुफावजतु, अक़्दे मुफावजा इस कफालत को मुतज़म्मिन है। वबिन नजरी इलल इब्तिदाई, यहां से जवाब दे रहे हैं। साहिबैन फरमाते थे कि अक़्दे कफालत तबर्रू है, इसीलिए तो बच्चा अब्दे माजून और मुकातब ये कफील नहीं बन सकते, क्योंकि अक़्दे कफालत तबर्रू है और ये अफराद तो तबर्रू के अहल नहीं है। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि बच्चा अब्द माजून और मुकातब ये अक़्दे कफालत के अहल नहीं है इब्तिदा की तरफ नजर करते हुए, क्योंकि अक़्दे कफालत इब्तिदा के एतबार से तबर्रू है भाई, और ये बच्चा और अब्द माजून और मुकातब ये तो अहले तबर्रू नहीं है, इसलिए ये कफील नहीं बन सकते। तो कहते हैं वबिन नजरी इलल इब्तिदाई, और इब्तिदा की तरफ नजर करते हुए लम तसिह मिम्मन ज़करहू, ये अक़्दे कफालत सही नहीं है मिम्मन ज़करहू उन अफराद की जानिब से, ज़करहू जिनको इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया है, यानी बच्चा है अब्द माजून है या मुकातब है। इब्तिदा की तरफ नजर करते हुए ये बच्चा अब्द माजून और ये मुकातब ये अक़्दे कफालत के अहल नहीं है, क्योंकि इब्तिदा के एतबार से ये अक़्दे कफालत तबर्रू है भाई। तो कहते हैं वबिन नजरी इलल इब्तिदा इलम तसिह मिम्मन ज़करहू, और इब्तिदा की तरफ नजर करते हुए ये अक़्दे कफालत सही नहीं है उस शख्स की तरफ से जिसको इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया। और नीज साहिबैन ने जिक्र किया था कि अक़्दे कफालत अक़्दे तबर्रू है, इसीलिए मरजुल मौत में मुबतला शख्स जो है अपने सुलू से माल के अंदर यह अक़्द कर सकता है, उससे जायद के अंदर यह अक़्द नहीं कर सकता। तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि वहां भी इब्तिदा की तरफ देखा जाए तो अक़्दे कफालत तबर्रू है, तो इब्तिदा की तरफ नजर करते हुए मरजुल मौत में मुबतला मरीज जो है वह अपने सुलू से माल से जायद के अंदर यह अक़्द नहीं कर सकता। तो कहते हैं वयसिहु मिनसुलुसी मिनल मरीजी, ये वयसिहु का आतफ है पीछे जो आया लम तसिह, तो लम तसिह को उठाएं और उसकी जगह ये इबारत लगा दें और फिर पीछे से जुमला पढ़ें। तो कहते हैं वबिन नजरी लल इब्तिदाई, और इब्तिदा की तरफ नजर करते हुए यसिहु मिनसुलुसी मिनल मरीजी, मरीज से भी सुलुस में से ही सही है भाई। तवज्जो है। तो कहते हैं वह बिन नजरी इलल इब्तिदाई और इब्तिदा की तरफ देखते हुए लम तसिह मिम मन ज़करहू, यह अक़्द कफालत सही नहीं है उन लोगों से जिनको इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया, यानी बच्चा है अब्दे माजून है और मुकातब है। वह यसिहु मिना सुलुसी मिनल मरीजी, और इसी तरह इब्तिदा की तरफ नजर करते हुए मरजुल मौत में मुबतला शख्स के सुलुस में से सही है। बिखिलाफ इल कफालत बिन नफसी, साहिबान फरमाते थे कि यह कफालत बिल माल भी अमरिल अजनबी जो है ये कफालत बिन नफ्स की तरह है, और कफालत बिन नफ्स के अंदर जो शरीक कफील बनेगा उसी से मुतालबा हो सकता है, दूसरे से नहीं। मसलन जैद एक अजनबी की जात का, उसकी जान का कफील बन गया कि इसको काजी के पास हाजिर करना मेरा काम है, तो जो कफील बना है जिसने अक़्द कफालत बिन नफ्स किया है उसी से इसका मुतालबा हो सकता है, जैद से मुतालबा होगा कि वो उस आदमी को काजी के पास हाजिर करे, जैद के शरीक यानी अमर से उसका मुतालबा नहीं हो सकता। तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि आप इस कफालत बिल माल भी अमरिल अजनबी जो है इसको आप कफालत बिन नफ्स की तरह करार नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि कफालत बिन नफ्स जो है वो इब्तिदाअन भी तबर्रो है और बकाअन भी तबर्रो है, जबकि कफालत बिल माल भी अमरिल अजनबी वो तो इब्तिदाअन तबर्रो है लेकिन इंतहाअन वो मुआवजा है। तो आप इस कफालत बिल माल को कफालत बिन नफ्स की तरह करार नहीं दे सकते। तो कहते हैं बिखिलाफ इल कफालती बिन नफ्सी, बखिलाफ कफालत बिन नफ्स के, लिअन्नहु तबर्रुउन इब्तिदा अव इंतिहा, इसलिए क्योंकि वो तो तबर्रु है इब्तिदा और इंतिहा के एतबार से। व अम्मल इकराज़ु, अब इकराज का भी जवाब दे रहे हैं, इमाम साहब की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि यह अक़्द कफालत बिल माल भी अमरिल अजनबी जो है यह इब्तिदाअन तबर्रुअ है और इंतहाअन मुआवजा है, लिहाजा मुफावजा इसको मुतज़म्मिन हुआ। और बाकी आपने कहा कि मरीज सुलुस से ज्यादा में कफालत नहीं कर सकता और बच्चे वगैरह जो है वो भी कफालत नहीं कर सकते, तो उसका जवाब दिया कि भाई वो इब्तिदा की तरफ नजर करते हुए है, हमने भी आपको बतला दिया कि इब्तिदा के एतबार से यह कफालत तबर्रो है, इंतहा के एतबार से हम बात कर रहे हैं कि मुफावजा इसको मुतजमीन है भाई। और फिर यह भी बतलाया कि आप इस कफालत बिल माल को कफालत बिन नफ्स की तरह भी करार नहीं दे सकते, क्योंकि कफालत बिन नफ्स वो तो इब्तिदाअन जैसे तबर्रो है इंतहाअन भी तबर्रो है, जबकि कफालत बिल माल वो इब्तिदाअन तो तबर्रो है लेकिन इंतहाअन मुआवजा है, तो दोनों अलग चीजें हैं, आप एक को दूसरे जैसा करार नहीं दे सकते। वह अमल इकराज उफान अबी हनीफत रहमल्ला, यहां से अब वो इकराज का भी जवाब दे रहे हैं। साहिबैन ने जिक्र किया था कि ये जो कफालत बिल माल है ये भी इकराज की तरह है, जैसे इकराज के अंदर जिस शख्स को कर्ज दिया जाता है उसी पर वो कर्ज लाजिम होता है, उसी से कर्ज का मुतालबा होता है, उसके शरीक से कर्ज का मुतालबा नहीं हो सकता। इसी तरह कफालत बिल माल के अंदर भी जो शख्स कफील बना है उसी से माल का मुतालबा हो सकता है, उसके शरीक से माल का मुतालबा नहीं हो सकता। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं, और याद रखना दो जवाब देंगे साहिब हिदाया इस सिलसिले में, दो जवाब देंगे इमाम साहिब की जानिब से, और एक जवाब इनकारी और एक जवाब तस्लीमी। इनकारी जवाब जिसमें मुखालिफ के दावे को रद्द किया जाता है, तस्लीमी जवाब जिसमें मुखालिफ के दावे को तस्लीम करके फिर जवाब दिया जाता है। तो पहला जवाब इनकारी देंगे कि ऐ साहिबैन, आपका यह कहना है कि जो इकराज है ये सिर्फ उसी शख्स पर लाजिम होता है जिसने कर्ज लिया है, उसके शरीक पर यह कर्ज लाजिम नहीं होता, उससे मुतालबा नहीं हो सकता, हमें आपका यह दावा तस्लीम नहीं है। बल्कि इकराज के अंदर भी जिस तरह कर्ज लेने वाले से कर्ज का मुतालबा हो सकता है इसी तरह उसके शरीक से भी कर्ज का मुतालबा हो सकता है। चुनांचे इमाम साहब की एक रिवायत जो उनसे हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह ने नकल फरमाई है उसके मुताबिक इकराज के अंदर भी जिस शरीक ने कर्ज लिया है उससे भी मुतालबा हो सकता है कर्ज का, और उसके शरीक से भी कर्ज का मुतालबा हो सकता है। वजह यह कि जो इकराज है यह भी अक़्द मुआवजा है, यह इकराज क्या है, अक़्द मुआवजा है, और जो भी अक़्द मुआवजा होता है मुफावजा उसको मुतज़म्मिन होता है। तो ये इकरार जो है ये अक़्द मुआवजा की तरह किस तरह है ये समझ लीजिए भाई। देखिए सूरत ये है कि आप कर्ज लेते हैं एक शख्स से, मसलन 100 दिरहम आपने उसे कर्ज लिए कि मुझे हाजत है, जरूरत है, उसने आपको 100 दिरहम दे दिए, तो ये 100 दिरहम तो आप अपनी जरूरत में खर्च कर देंगे और मसलन 2 महीने के बाद अब आपके पास मजीद 100 दिरहम आ गए, अब आप वो कर्ज वापस करते हैं। तो मुझे बताइए जो दिरहम आपने कर्ज में लिए थे वही दिरहम वापस कर रहे हैं या ये उन्हीं जैसे और दिरहम हैं? जाहिर सी बात है वो दिरहम तो आप खर्च कर चुके हैं, ये उन्हीं जैसे और दिरहम हैं भाई। तो मालूम हुआ आप ये जो दिरहम वापस कर रहे हैं वो जो दिरहम आपने लिए थे ये उनका इवज है भाई, ये उनका इवज है, ये उनके मिसल हैं भाई। तो मालूम हुआ ये जो इकराज है ये भी अक़्दे मुआवजा है। तो इमाम साहब से एक रिवायत यह है कि यह इकरार अक़्द मुआवजा है, लिहाजा जब एक शख्स ने कर्ज लिया है तो उसके शरीक से भी कर्ज का मुतालबा हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह अमल इकराज और बाकी कर्ज देना फान अबी हनीफत रहिमहुल्लाह ताला, तो इमाम साहब से रिवायत है कि अन्नहु यलजमु साहिबहु, कि ये भी लाजिम हो जाता है उसके साथी पर, यह इकराज भी उसके साथी पर लाजिम हो जाता है, यानी उससे भी उस कर्ज का मुतालबा हो सकता है। तो यह तो इनकारी जवाब था। साहिबैन क्या फरमाते थे, कर्ज का मुतालबा जिसने कर्ज लिया है उसी से हो सकता है, दूसरे शरीक से मुतालबा नहीं हो सकता। तो पहला जवाब इनकारी दिया कि नहीं, हमें आपकी यह बात तस्लीम नहीं, कर्ज का मुतालबा दूसरे शरीक से भी हो सकता है क्योंकि यह अक़्द मुआवजा है भाई, यह अक़्द मुआवजा है। अब आगे तस्लीमी जवाब देंगे। दूसरा जवाब कहते हैं वला सुल्लेमा, और अगर आपकी बात तस्लीम कर ली जाए कि कर्ज के अंदर शरीक से मुतालबा नहीं हो सकता, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि जो इकराज है यह इआरा है। इकराज क्या है? इआरा। याद रखो इआरा का माना है किसी को कोई चीज आरियत के तौर पर देना, इस्तेमाल के लिए देना। मसलन घरों में मेहमान आते हैं तो बाज औकात हमसायों से इस्तेमाल के लिए बर्तन ले लिए जाते हैं और फिर इस्तेमाल के बाद वापस कर दिए जाते हैं, तो इसको आरियत कहते हैं, यानी किसी से कोई चीज इस्तेमाल के लिए लेना बगैर किसी इवज के। अगर आप इवज भी देते हैं तो फिर याद रखो फिर ये इजारा है भाई, किराए पर कोई चीज लेना, लेकिन इआरे के अंदर उजरत नहीं होती, इवज नहीं होता। और याद रखना ये जो इआरा है ये अक़्द तबर्रु है। मैंने आपको बतलाया तबर्रु इसे कहते हैं कि एक चीज आप पर लाजिम नहीं है और आप अपनी तरफ से अदा करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तबर्रु कहते हैं। तो ये जो इआरा है यानी आरियतन किसी को कोई चीज देना इस्तेमाल के लिए, ये अक़्द तबर्रु है, यानी ये आप नेकी और एहसान कर रहे हैं दूसरे को ये चीज इस्तेमाल के लिए बगैर इवज के दे रहे हैं। तो तस्लीमी जवाब जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया इमाम साहिब की तरफ से कि हमें आपकी बात तस्लीम है, इकरार के अंदर जिस शरीक ने कर्ज लिया है उसी से मुतालबा हो सकता है, दूसरे शरीक से मुतालबा नहीं हो सकता। वजह यह कि इकरार ये इआरा है। ये क्या है? इआरा है, और इआरा अक़्द तबर्रु है, और एक शरीक का तबर्रु दूसरे शरीक पर लाजिम नहीं हो सकता, लिहाजा इसी शरीक से इस कर्ज का मुतालबा हो सकता है जिसने कर्ज लिया है, उसके दूसरे साथी से कर्ज का मुतालबा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वला सुल्लिमा, और अगर आपकी बात तस्लीम कर ली जाए कि ये जो इकराज है ये उसके साथी पर लाजिम नहीं होता, फहुआ इआरतुन, तो ये इकराज जो है ये इआरा है। फयकूनु लिमिस्लिहा हुक्मु ऐनिहा ला हुक्मुल बदली, तो एतराज होता है, एतराज होता है कि आप इकराज को इआरा कैसे करार दे सकते हैं? इआरा के अंदर तो जो चीज आरियतन इस्तेमाल के लिए ली है वही चीज वापस की जाती है। हमसायों के घर से बर्तन लिए हैं इस्तेमाल के लिए तो वही बर्तन उसको वापस किए जाएंगे। इसी तरह आपका साथी आपसे गाड़ी ले जाता है इस्तेमाल के लिए, तो फिर इस्तेमाल के बाद वही गाड़ी वो आपको वापस लौटाएगा, लेकिन कर्ज के अंदर जो दिरहम लिए थे वही दिरहम तो वापस नहीं किए जाते, वो दिरहम तो जरूरत के अंदर खर्च कर दिए जाते हैं, बल्कि इकराज के अंदर तो उन दिरहमों का मिसल दिया जाता है, उन जैसे दिरहम वापस किए जाते हैं। तो आप इकरास को इआरा कैसे करार दे सकते हैं? इआरा में ऐन वही चीज वापस की जाती है और इकरास के अंदर उस चीज का मिसल वापस किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जवाब देंगे साहिबे हिदाया कि इकरार जो है ये इआरा है, और यहां पर जो दिरहम और दीनार वापस किए जा रहे हैं अगरचे वो मिसल हैं, वो बेआईन ही वही दिरहम नहीं, उनका मिसल है, उनका बदल है, लेकिन यहां इस मिसल का भी वही हुक्म है जो ऐन का था। यूं समझो गोया आप वही दिरहम वापस लौटा रहे हैं जो आपने लिए थे, जैसे इस्तेमाल के बाद वही बर्तन वापस किए जाते हैं, यहां भी यूं ही समझो आप वही दिरहम वापस लौटा रहे हैं। मालूम हुआ इकरास के अंदर मिसल लौटाया जाता है, लेकिन मिसल का भी वही हुक्म है जो उस ऐन शय का हुक्म था भाई। तो यह माना है, कहते हैं वला उसुल्लिमा फहुआ इआरतुन, और अगर आपकी बात तस्लीम कर ली जाए कि कर्ज जो है उसके साथी पर लाजिम नहीं होता, फहुआ इआरतुन, तो यह इकरास जो है यह इआरा है, फयकूनु लिमिस्लिहा हुक्मु आइनिहा, तो इस इआरे का जो मिसल है यानी ये जो इकरास है जिसको हमने इआरा करार दिया, फयकूनु लिमिस्लिहा हुक्मु आइनिहा, तो इसके मिसल का वही हुक्म है जो इसकी ऐन का हुक्म है, ला हुक्मुल बदली, बदल वाला हुक्म नहीं है भाई। अगर बदल का हुक्म दे देंगे फिर तो ये इआरा ना रहा भाई, फिर तो ये अक्द मुआवजा बन जाएगा। तवज्जो है? तो मालूम हुआ दो जवाब दिए साहिब हिदाया ने, एक जवाब इनकारी था कि हमें आपकी बात तस्लीम ही नहीं है कि कर्ज दूसरे साथी पर लाजिम नहीं होता, बल्कि दूसरे साथी पर भी कर्ज लाजिम हो जाता है, उससे भी मुतालबा हो सकता है, और इस जवाब की बुनियाद इस पर थी कि इकरार मुआवजा है, इकरार मुआवजा है, और दूसरा जवाब यह दिया कि हमें आपकी बात तस्लीम है, इकरार के अंदर जो कर्ज होता है वह दूसरे साथी पर लाजिम नहीं होता, क्योंकि इकरार मुआवजा नहीं है बल्कि इआरा है। यहां पर जो बाद में दिरहम और दीनार वापस किए जा रहे हैं वो जो दिरहम कर्ज में लिए थे उनके मिसल हैं, लेकिन यहां मिसल का भी वही हुक्म है जो ऐन उन्हीं दिरहम और दनानीर का था जो बतौर कर्ज के लिए थे भाई। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फयकून उली मिसलिहा हुक्म आइनिहा ला हुक्मुल बदली, तो इनके मिसल का भी वही हुक्म है जो इनकी ऐन का हुक्म है, ना कि बदल का हुक्म। हत्ता ला यसहु फीहिल अजलु, यहां तक कि इसके अंदर मुद्दत का मुकर्रर करना भी सही नहीं है। याद रखो यहां पर भी हत्ता नसब नहीं देगा, ला यसहु पर रफा पड़ेंगे, क्योंकि यहां भी हत्ता के अमल की शराइत पूरी नहीं है भाई। यहां भी हत्ता तफरी के लिए है, माकबल पर तफरी कर रहे हैं साहिब हिदाया। कहते हैं हत्ता ला यसहु फीहिल अजलु, यहां तक कि इकरास के अंदर मुद्दत का मुकर्रर करना भी सही नहीं है। किसी को कोई कर्ज दें तो उसमें मुद्दत का मुकर्रर करना सही नहीं। आप कहेंगे कि भाई हम तो जब भी कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं हम तो मुद्दत मुकर्रर करते हैं, तो याद रखना कर्ज के अंदर मुद्दत को जिक्र किया जाता है लेकिन मुद्दत मुकर्रर करने से लाजिम नहीं होती, मुद्दत मुकर्रर करने से लाजिम नहीं होती। तो मालूम हुआ कर्ज के अंदर मुद्दत का मुकर्रर करना सही नहीं, यानी मुकर्रर करने से वो लाजिम नहीं होती, और ये अलामत है इस बात की कि इकरार इआरा है। याद रखो इआरा अक्द तबर्रो है, आप किसी को कोई चीज इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं, यह चीज देना आप पर लाजिम नहीं था लेकिन आप अपनी तरफ से नेकी और एहसान करते हुए यह चीज उसको दे रहे हैं, और इस इआरे के अंदर मुद्दत का मुकर्रर करना सही नहीं है, इसलिए क्योंकि इस सूरत में तो जबर करना लाजिम आएगा। आप नेकी और एहसान कर रहे हैं और नेकी और एहसान के अंदर दूसरे पर जबर करें, उसको मजबूर कर दें, उसके लिए मुद्दत मुकर्रर कर दें, नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। नेकी और एहसान के साथ जबर जमा नहीं हो सकता, नेकी और एहसान और चीज है और जबर करना और चीज है, एक ही चीज नेकी भी हो और जबर भी हो ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा इआरे के अंदर मुद्दत मुकर्रर की जाए तो वह मुद्दत मुकर्रर नहीं होती। इसी तरह यह जो इकरार है इसके अंदर भी मुद्दत मुकर्रर की जाए तो वह मुद्दत मुकर्रर नहीं होती, यानी लाजिम नहीं होती। मालूम हुआ इकरार इआरा है, जैसे इआरा के अंदर मुद्दत का मुकर्रर करना सही नहीं, इसी वजह से इकरार के अंदर भी मुद्दत का मुकर्रर करना सही नहीं है भाई। ये माना है हत्ता ला यसिहु फीहि अजलु, यहां तक इकरास के अंदर मुद्दत का मुकर्रर करना सही नहीं है। फला यतहक्कु मुआवजतन, तो इकरास जो है वो मुआवजा होकर न पाया गया। ये दूसरा जवाब चल रहा है, पहले जवाब के मुताबिक इकरास मुआवजा है, दूसरा जवाब दिया कि इकरास मुआवजा नहीं, ये तो इआरा है। तो कहते हैं फला यतहक्कु मुआवजतन, तो इकरास जो है वो मुआवजा होकर न पाया गया। तो साहिब हिदाया ने इकराज के दो जवाब जिक्र किए भाई, एक जवाब इनकारी और एक जवाब तस्लीमी। साहिबैन ने जिक्र किया था कि कफालत बिल माल बि अमरिल अजनबी जो है ये इकराज की तरह है, और इकराज के अंदर जिसने कर्ज लिया है उसी से मुतालबा हो सकता है, उसके शरीक से मुतालबा नहीं हो सकता। तो कफालत बिल माल के अंदर भी जो कफील बना है उसी से मुतालबा हो सकता है, उसके शरीक से मुतालबा नहीं हो सकता। तो पहला जवाब इनकारी दिया कि हमें आपकी ये बात तस्लीम ही नहीं है कि इकराज के अंदर सिर्फ उसी कर्ज लेने वाले से मुतालबा हो सकता है, बल्कि इकराज भी अक़्दे मुआवजा है, लिहाजा शरीक से भी उसका मुतालबा हो सकता है। लिहाजा अगर आप कफालत बिल माल को इकराज की तरह करार दे दें फिर भी आपका दावा साबित नहीं होता, क्योंकि इकराज के अंदर भी दोनों से मुतालबा हो सकता है, जैसे कफालत बिल माल में दोनों से मुतालबा हो सकता है। और दूसरा जवाब तस्लीमी दिया कि अगर आपकी बात तस्लीम कर ली जाए इकरास के अंदर दूसरे शरीक से मुतालबा नहीं हो सकता, तो उसकी वजह यह है कि यह इकरास इआरा है, यानी अक़्दे तबर्रुअ है, इब्तिदाअन भी तबर्रुअ और इंतहाअन भी तबर्रुअ, जबकि कफालत बिल माल भी अमरिल अजनबी वह इब्तिदाअन तो तबर्रुअ है लेकिन इंतहाअन वह मुआवजा है। लिहाजा आपका कफालत बिल माल भी अमरिल अजनबी को इकरास की तरह करार देना सही ही नहीं है, क्योंकि इकरास तो इब्तिदाअन भी तबर्रो है और इंतहाअन भी तबर्रो है। बात समझ में आ गई। वलौ कानत बिगैरि अम्रिहि लम तल्ज़म साहिबहु फि सहीहि लिन्इदामि मअनल मुफावज़ा। भाई अभी तक उस कफालत बिल माल की बात चल रही थी जो भी अमरिल अजनबी हो, जो भी अमरिल मकफूल अनहु हो, अजनबी के कहने पर एक शरीक कफील बना है, और अगर अजनबी के कहे बगैर ही शरीक जो है वो कफील बन गया है, तो याद रखो उसके अंदर साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि इमाम साहिब और साहिबैन का कोई इख्तिलाफ नहीं, क्योंकि वो कफालत जो बगैरी अमरिल अजनबी हो वो इब्तिदाअन भी तबर्रुअ है और इंतहाअन भी तबर्रुअ है, क्योंकि वहां पर अगर कफील वो माल अदा भी कर दे तो फिर वो उस अजनबी पर यानी उस मकफूल अनहु पर रुजू नहीं कर सकता। तो वो कफालत जो भी अमरिल अजनबी हो वो तो इंतहाअन मुआवजा है, वहां तो इवज वसूल किया जा सकता है, लेकिन वो कफालत जो बगैरी अमरिल अजनबी हो उसके अंदर आखिर में अजनबी से मुआवजा वसूल नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा ये कफालत बगैरी अमरिल अजनबी ये इंतहाअन भी तबर्रुअ है, तो यहां मुआवजे वाला माना ही नहीं। जब मुआवजे वाला माना ही नहीं तो अक़्दे मुफावजा जो है, अक़्दे मुफावजा इसको मुतज़म्मिन नहीं, लिहाजा इसमें जो शख्स कफील बना है उसी से मुतालबा हो सकता है, उसके शरीक से मुतालबा नहीं हो सकता। तो कहते हैं वलौ कानत बिगैरी अमरिही, और अगर वो कफालत जो है वो मकफूल अनहु के हुक्म के बगैर ही हो, तो लम तल्ज़म साहिबहु फि सहीहि, तो सही कौल के मुताबिक ये कफालत उसके साथी पर लाजिम नहीं है। लिन्इदामि मअनल मुफावजती, इस वजह से कि मुफावजा का माना मादूम है, यहां पर मुफावजा वाला यानी मुआवजा वाला माना नहीं पाया जा रहा, ना इब्तिदाअन और ना इंतहाअन। भाई वह मुतलकुल जवाब फिल किताबी महमूल अलल मुकैयद। भाई पीछे मतन पर जरा आइए जहां से हमने सबक शुरू किया था। काला इमाम मोहम्मद रहमला जामे सगीर में फरमाते हैं वलौ कफला अहद हुमा बिमालिन अन अजनबीन, अगर दो शरीकों में से एक जो है वो माल का कफील बन गया अन अजनबीन किसी अजनबी की तरफ से, तो लजिमा साहिबहू इंदा भी हनीफत रहमल्ला व काला ला यल्जमहू, तो इमाम साहब के नजदीक उसके शरीक पर भी यह माल लाजिम है और साहिबैन के नजदीक उसके शरीक पर यह माल लाजिम नहीं है। तवज्जो है, तो मतन के अंदर मुतलकन कफालत का जिक्र है वलौ कफला अहदुहुमा बिमालिन अन अजनबीन, अगर एक शरीक अजनबी की तरफ से माल का कफील बन गया, यहां यह जिक्र नहीं है कि भी अमरिल अजनबी कफील बना है या भी गैर अमरिल अजनबी कफील बना है, तो मतन के अंदर मुतलक कफालत बिल माल जिक्र है। तवज्जो है, मुतलक कफालत बिल माल जिक्र है, लेकिन साहिब हिदाया ने आपको बतला दिया कि जो साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ है यह मुतलक कफालत बिल माल में नहीं है, बल्कि कफालत बिल माल भी अमरिल अजनबी के अंदर यह इख्तिलाफ है। तो अब उसी को साहिब हिदाया आगे बयान फरमा रहे हैं कि मतन के अंदर तो मुतलक मसला जिक्र है, लेकिन वो मुकय्यद पर महमूल है, यानी वहां भी अमरिल अजनबी की कैद मलहूज है, वहां भी अमरिल अजनबी की कैद मलहूज है, यानी वो कफालत वहां मुराद है जो भी अमरिल अजनबी हो बई, यानी भी अमरिल मकफूल अनहू हो बई। बात समझ में आ गई। अब आइए सबक पर। कहते हैं वह मुतलकुल जवाब फिल किताबी, और कहते हैं जामे सगीर के अंदर जो मुतलक जवाब जिक्र है, यानी जहां कोई कैद नहीं है, महमूल उन अलल मुकय्यदी, ये मुतलक जवाब मुकय्यद पर महमूल है, यानी जिक्र तो मुतलक कफालत है लेकिन मुराद कफालत भी अमरिल अजनबी है भाई। तो कहते हैं वह मुतलकुल जवाब फिल किताबी महमूल अलल मुकय्यदी, और किताब यानी जामे सगीर के अंदर, यानी वो जो मतन पीछे गुजरा है उसके अंदर जो मुतलक जवाब जिक्र है वो मुकय्यद पर महमूल है। यहां तक बात समझ में आ गई भाई। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि मतन के अंदर जिक्र तो मुतलक कफालत है लेकिन मुराद मुकय्यद कफालत है, यानी कफालत भी अमरिल अजनबी, कफालत भी अमरिल अजनबी, और अगर कफालत भी गैरी अमरिल अजनबी हो तो उसमें इख्तिलाफ नहीं है। उसी को पीछे जिक्र भी किया था, वलौ कानत भी गैरी अमरी ही लम तलजम साहिबहु फि सहीही, सही कौल के मुताबिक अगर बगैर अमरिल अजनबी कफील बनेगा तो उसके शरीक पर यह माल लाजिम नहीं। और बतलाया फिर सही सही कौल के मुताबिक, तो यह सही कौल के जरिए दरअसल एहतराज किया है साहिब हिदाया ने दूसरे कौल से। बहुत से फुकाहा इस बात की तरफ गए हैं कि मतन के अंदर जैसे मुतलक कफालत को जिक्र किया गया है, इसी तरह इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ मुतलक कफालत बिल माल में ही है। मतन के अंदर मुतलक कफालत बिल माल के अंदर इख्तिलाफ को जिक्र किया गया है, और इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ मुकय्यद कफालत में नहीं है बल्कि मुतलक कफालत में ही इख्तिलाफ है। और इसी वजह से साहिब हिदाया ने पीछे क्या कहा था, फि सही सही कौल के मुताबिक। दरअसल यह दूसरे फुकहा के कौल से एहतराज किया भाई। आगे देखिए भाई, व जमानुल गस्बी वल इस्तेहलाक बिमंजिलतिल कफालति इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाहु तआला लिअन्नहु मुआवजतुन तिहाअन। भाई दो आदमियों ने आपस में अक्दे मुफावजा किया हुआ है, तो दोनों में से हर एक दूसरे का वकील भी है और कफील भी है। अब सूरत यह है कि इन दो शरीकों में से एक शरीक किसी का कोई माल गसब कर लेता है, और आप जानते हैं कि गसब की वजह से इस पर जमान आएगा, या इसी तरह दो शरीकों में से एक शरीक ने किसी का माल हलाक कर दिया तो इस इस्तेहलाक की वजह से भी उस पर जमान आएगा। तो क्या यह जमान जो गसब की वजह से आया या यह जमान जो इस्तेहलाक की वजह से आया, क्या इसका मुतालबा दूसरे शरीक से किया जा सकता है या नहीं? तो आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि यह जो जमान आया है ये बतौर ईवज के आया है, बतौर मुआवजा के आया है। एक शख्स ने किसी की चीज गसब की तो ईवज के तौर पर इस पर जमान आ गया, ये एक ने दूसरे का माल हलाक किया तो ईवज के तौर पर इस पर जमान आ गया। तो यहां मुआवजे वाला माना है इंतहा के एतबार से। इब्तिदाअन तो गसब और इस्तेहलाक है लेकिन इंतहाअन जमान आ रहा है, तो इंतहाअन मुआवजा है। तो यह भी किसकी तरह हुए, कफालत की तरह हुए, और कफालत की वजह से एक शरीक पर जो माल लाजिम होता है उसका मुतालबा दूसरे शरीक से भी किया जा सकता है। तो ये जो गसब और इस्तेहलाक की वजह से जो जमान लाजिम होगा उसका मुतालबा भी दूसरे शरीक से किया जा सकता है इमाम साहिब के नजदीक भाई। तो कहते हैं वह जमान उल गसबी वल इस्तेहलाकी, और गसब और इस्तेहलाक का जो जमान है, भी मंजिलतिल कफालती इंदा अबी हनीफा रहमहुल्ला, यह भी कफालत के दर्जे में है इमाम साहिब के नजदीक, यानी ये उसके शरीक पर भी यह जमान लाजिम होगा, उससे भी मुतालबा हो सकता है। ले अन्नहु मुआवजतुन इंतहा अन, इसलिए क्योंकि यह जमान जो है यह भी मुआवजा है इंतहा के एतबार से। बात समझ में आ गई। यहां शारहीन ने एतराज किया है कि साहिब हिदाया ने सिर्फ इमाम साहेब को जिक्र फरमाया, हालांकि इमाम मोहम्मद रहमला का भी यही मजहब है। इमाम मोहम्मद रहमला के नजदीक भी गसब और इस्तेहलाक की वजह से जो जमान लाजिम होगा उसका मुतालबा उसके शरीक से भी किया जा सकता है। तो साहिब हिदाया ने सिर्फ इमाम साहेब को जिक्र फरमाया, लेकिन मुहशी हजरात फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद रहमला का भी यही मजहब है, लिहाजा साहिब हिदाया को इमाम मोहम्मद रहमला को भी जिक्र करना चाहिए था। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, काला फ इन वारिसा अहदुहुमा मा लैया से खुफी ही शिरका। भाई मैंने आपको बतलाया कि ये जो अक़्दे मुफावजा है, या यूं कहो ये जो अक़्दे शिरकत है, ये दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका में जायज है, सामान मकीलात मौजूदात वगैरह में जायज नहीं। इसी तरह जमीन के अंदर भी यानी गैर मनकूली जायदाद में भी ये अक़्दे शिरकत जायज नहीं है। भाई तो अब साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि हमने आपको बतलाया था कि अक़्दे मुफावजा के अंदर दोनों शरीकों का माल बराबर होना चाहिए। हर माल नहीं, वो माल जिसमें शिरकत हो सकती है, यानी दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका। एक के पास अगर 20 दिरहम है तो दूसरे के पास भी 20 दिरहम ही होने चाहिए। अगर दोनों का माल बराबर नहीं है तो फिर ये अक़्दे मुफावजा नहीं है, बल्कि ये अक़्दे ऐनान होगा। अब उसी को साहिब हिदाया बयान फरमा रहे हैं कि दो आदमियों ने आपस में अक़्दे मुफावजा कर लिया, लेकिन फिर बाद में एक शरीक को कुछ जायद माल कहीं से मिल गया, और ऐसा माल मिला जिसमें शिरकत हो सकती है, यानी दिरहम मिले या दीनार मिले या फुलूस नाफिका मिल गए। भाई चाहे मसलन वरासत के तौर पर उसको मिल गए, या चाहे उसको किसी ने हिबा कर दिए यानी तोहफे के तौर पर दे दिए, तो दोनों का माल बराबर ना रहा। जब दोनों का माल बराबर ना रहा तो मुफावजा बातिल हो जाएगा, क्योंकि मुफावजा के अंदर जैसे इब्तिदाअन मुसावात जरूरी है माल में, इसी तरह बकाअन भी माल के अंदर मुसावात और बराबरी जरूरी है। भाई तो दो अफराद ने अक़्दे मुफावजा किया हुआ है, इनमें से एक को वरासत के अंदर या तोहफे के तौर पर ऐसा माल मिल गया जिसमें शिरकत हो सकती थी, तो अक़्दे मुफावजा बातिल हो जाएगा। तो कहते हैं काला इमाम मोहम्मद रहमला जामे सगीर में फरमाते हैं, फइन वरिसा अहदुहुमा मालन, अगर इन दोनों शरीकों में से एक वारिस हो गया ऐसे माल का। देखो मालन नकेरा है और यसेहु आगे फेल आ रहा है, तो ये उसके लिए सिफत बनेगा। और मौसूस सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं, मौसूस से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं। फिर तर्जमा देख लीजिए, काला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं, फइन वरिसा अहदुहुमा मालन, अगर इन दोनों में से कोई एक शरीक जो है वो वारिस बन गया ऐसे माल का, यसे खुफी ही शिरकत कि जिसके अंदर शिरकत सही है, अब वो हिबा लहू या उसको ऐसा माल हिबा किया गया, वसला इला यदी ही और ये माल उसके हाथ तक पहुंच गया यानी उसके कब्जे में आ गया। भाई मैंने आपको बतलाया था कि हिबा के अंदर कब्जा भी जरूरी है, फिर ही हिबा ताम होगा। मसलन आपको किसी शख्स ने तोहफे के तौर पर कोई किताब दी, तो जब तक वो किताब आपके कब्जे में नहीं पहुंचेगी आप इस किताब के मालिक नहीं हैं। सिर्फ जुबान से कहने से कोई शख्स किसी चीज का मालिक नहीं बनता जब तक वो चीज उसके कब्जे में ना आ जाए। तो यहां पर भी इसीलिए कहा कि अब वो हिबा लहू या एक शरीक को वो माल हिबा किया गया, वह वसला इला यदी ही और वो माल उसके कब्जे को पहुंच गया यानी उसके हाथ में आ गया, तो ये उसका मालिक बन गया। जब मालिक बन गया अब एक का माल ज़ायद है और दूसरे का माल कम है, तो अक़्दे मुफावजा बातिल हो जाएगा। तो कहते हैं इस सूरत के अंदर बतालतिल मुफावजा तू, तो अक़्दे मुफावजा बातिल हो जाएगा, वसारत ऐनानन और ये शिरकत जो है ये शिरकत ऐनान हो जाएगी, लिफावातिल मुसावाती इसलिए क्योंकि बराबरी खत्म हो गई, फी मा यसलुहु रासल माली उस चीज के अंदर जो रासुल माल होने की सलाहियत रखता है। भाई एक शरीक को दिरहम दीनार या फुलूस नाफिका मिले हैं और इन पर तो शिरकत हो सकती है, तो एक शरीक ऐसे माल का मालिक बन गया जिसमें शिरकत हो सकती है लेकिन शिरकत है नहीं, तो माल में बराबरी न रही। तो कहते हैं लिफावातिल मुसावाती फी मायसलुहु रासल माली, इस वजह से कि बराबरी फौत हो गई उस माल के अंदर जो रासुल माल होने की सलाहियत रखता है। इद हिया शर्तुन फी हिबतिदा व बकाअन, इसलिए क्योंकि यह बराबरी तो शर्त है हकद मुफावजा में, इब्तिदा व बकाअन, इब्तिदा के एतबार से भी और बका के एतबार से भी। वहाजा, और यह इस वजह से हकद मुफावजा इसलिए बातिल हुआ, लिअन्न अलआखरा, इसलिए क्योंकि दूसरा शरीक जो है ला युशारिकुहु फीमा असाबहु, वो तो शरीक नहीं है उस माल के अंदर जो एक को मिला है। लिनइदाम सबबी फी हकही, इसलिए क्योंकि उसके अंदर शिरकत का सबब मादूम है। एक को विरासत के तौर पर कुछ माल मिला है या किसने तोहफे के तौर पर एक को माल दिया है, तो दूसरे शरीक के लिए तो मिल्कियत वाला सबब नहीं पाया गया, वो इस माल का मालिक नहीं। जब वो इस माल का मालिक नहीं तो दोनों के माल में बराबरी न रही। तो कहते हैं वहादा, और ये अक़्द मुफावजा इसलिए बातिल हो जाता है, लिअन्न अलआखर ला युशारिकुहु फीमा असाबहु, इसलिए क्योंकि दूसरा शरीक जो है वो शरीक नहीं है उस माल के अंदर जो एक को मिला है। लिनइदामि सबबि फी हक़िही, इसलिए क्योंकि उसके हक में तो शिरकत का सबब मादूम है। इल्ला अन्नहा तनक़लिबु इनानन, मगर यह कि यह अक़्द मुफावजा पलट कर इनान हो जाएगा, लिलिमकानी, मुमकिन होने की वजह से। ये दोनों ने आकद तो मुफावजा का किया था लेकिन माल में बराबरी न रही तो मुफावजा बातिल हो गया, लेकिन ये आकद ऐनान बन सकता है तो ये आकद ऐनान बन जाएगा। तो कहते हैं इल्ला अन्नहा तनक़लिबु इनानन लिलिमकानी, मगर ये कि ये मुफावजा जो है ये पलट कर इनान हो जाएगा, लिलिमकानी, मुमकिन होने की वजह से। फइन्नल मुसावात लैसा बिशर्तिन फीही, इसलिए क्योंकि इनान के अंदर मुसावात शर्त नहीं है, शिरकत ऐनान के अंदर दोनों शरीकों का माल बराबर होना शर्त नहीं है। कहते हैं फइन्नल मुसावात लैसा बिशर्तिन फीही, इसलिए क्योंकि ऐनान के अंदर मुसावात शर्त नहीं है। वली दवामी ही हुक्म इब्तिदाई लिकौनी ही गैर लाज़िमीन, और नीज ये शिरकत ऐनान का जो दवाम है इसका भी इब्तिदा वाला ही हुक्म है, इस वजह से कि यह लाजिम नहीं है। भैया के एतराज का जवाब दे रहे हैं, एतराज यह होता है, एतराज यह होता है कि पहले अक़्द मुफावजा था और अब आप इसको कह रहे हैं कि यह अक़्द ऐनान बन गया, यह क्या बन गया, अक़्द ऐनान बन गया, तो यह तो बका की हालत में ऐनान बन रहा है। इब्तिदा तो किससे की थी, शिरकत मुफावजा से, और बका में यह कौन सी शिरकत बन गई, शिरकत ऐनान बन गई, तो यह तो जायज नहीं होनी चाहिए। तो जवाब दे रहे हैं कि नहीं, शिरकत के अंदर बका का भी वही हुक्म होता है जो इब्तिदा का होता है, यानी जैसे इब्तिदा के अंदर शिरकत किसी पर लाजिम नहीं, आप एक आदमी के साथ अक़्द मुफावजा करते हैं, आप पर लाजिम नहीं है, आपकी मर्जी है अक़्द मुफावजा करें या ना करें, या एक आदमी के साथ आप शिरकत ऐनान करते हैं, आप पर लाजिम नहीं है कि आप शिरकत ऐनान करें या ना करें। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ यह जो शिरकत वाला अक़्द किया जाता है जैसे इब्तिदा के अंदर यह किसी पर लाजिम नहीं है, इसी तरह इंतहा के एतबार से और बका के एतबार से भी यह किसी पर लाजिम नहीं है। आपने एक आदमी के साथ अक़्द शिरकत कर लिया लेकिन कुछ अरसे के बाद आप कहते हैं बस भाई आज के बाद मेरा और आपका अक़्द शिरकत खत्म है, तो देखा अब वो आपको काजी के पास ले जाकर भी आप पर इस शिरकत को लाजिम नहीं कर सकता। मालूम हुआ ये जो शिरकत का अक़्द होता है ये किसी पर भी लाजिम नहीं होता, जिस वक्त ये दोनों चाहें उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये शिरकत का जो अक़्द है जैसे इब्तिदाअन गैर लाजिम है, इसी तरह इंतहाअन और बकाअन भी गैर लाजिम है। मालूम हुआ यहां बका का भी वही हुक्म है जो इब्तिदा का था, लिहाजा यहां पर यह जो अक़्द मुफावजा था ये बकाअन क्या बन गया, ऐनान बन गया, लेकिन बका का भी वही हुक्म है जो इब्तिदा वाला है, यूं समझो इब्तिदा ऐनान हो रही है, इब्तिदाए ऐनान हो रही है। तो कहते हैं वली दवाम ही हुक्म इब्तिदाई, और ऐनान के दवाम का वही हुक्म है जो इसकी इब्तिदा का हुक्म है। लिकौनी ही गैर लाजिमिन, इस वजह से कि ऐनान लाजिम नहीं है। फइन वरिसा अहदुहुमा अर्ज़न फहुवा लहू वला तफसुदुल मुफावज़तु, यहां से आपको यह बतलाएंगे कि अगर दोनों शरीकों में से एक ऐसे माल का मालिक बन गया जिसमें शिरकत जायज ही नहीं है, तो इससे मुफावजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्होंने आपको बतलाया भाई दो आदमियों ने अक्दे मुफावजा किया हुआ है तो दोनों का माल बराबर होना जरूरी है, अगर एक शरीक को भी जायद माल मिल गया तो मुफावजा बातिल हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों में से एक को ऐसा माल मिला है जिसमें शिरकत जायज ही नहीं है, मसलन सामान मिल गया या मकीलात और मौजूनात मिल गए या जमीन मिल गई, तो इससे मुफावजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुफावजा के अंदर दिरहम और दीनार और फुलूसे नाफका का बराबर होना जरूरी है, सामान और मकीलात और मौजूनात और जमीन वगैरह का बराबर होना जरूरी नहीं है। तो कहते हैं फइन वरिसा अहदुहुमा अर्ज़न, तो अगर इन दो शरीकों में से एक जो है वो सामान का वारिस हो गया, फहुवा लहू, तो ये सामान उसी का होगा, वला तफसुदुल मुफावजतु, और अक्दे मुफावजा भी फासिद नहीं होगा, वकदल आकारु, और इसी तरह है गैर मनकूली जायदाद भी। आकार किसे कहते हैं? गैर मनकूली जायदाद जो है यानी जमीन है, दुकान है, घर वगैरह। तो कहते हैं वकदल आकारु, और इसी तरह गैर मनकूली जायदाद भी है यानी वो भी किसी एक को मिल जाए तो उसे अक्द मुफावजा बातिल नहीं होगा। लिअन्नहु ला यसिहु फीहि शिरकतु, इसलिए क्योंकि जो सामान और गैर मनकूली जायदाद है इनके अंदर शिरकत सही नहीं है। फला युश्तरतुल मुसावातु फीहि, तो इनके अंदर बराबरी भी शर्त नहीं होगी, इनके अंदर बराबरी की शर्त भी नहीं लगाई जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।